तो जो राजयोग का विषय है, जो भी अभी तक अपने ज्ञान सुना, उसकी जो प्राप्ति है हमारी अष्ट शक्तियां, क्योंकि कई बार हमें महसूस होते हैं हम ये करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, हम ये नहीं करना चाहते पर लेकिन हो जाता है, तो ये महसूस तो होती है कि कहीं ना कहीं हमारे में शक्ति नहीं है। तो राजयोग हमें वो 8 शक्तियां देता है जो हमें दिन भर के कार्य व्यवहार में चाहिए, या हमें चाहे हम वर्क एरिया में हैं चाहे घर में हैं। तो वो शक्तियों की प्राप्ति किस तरह से होती है, विधि क्या है, तो आज का सेशन हमारे बीच में भ्राता अशोक गाबा जी ये सेशन लेंगे। भ्राता जी एज ए इंजीनियर एयरफोर्स में सीनियर ऑफिसर के रूप में रिटायर हुए, उसके बाद संस्था के ही एक सिक्योरिटी विंग है उसके नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, साथ साथ में पूरे हमारे हेडक्वार्टर के मैनेजर भी हैं, जो भी मैनेजमेंट्स हैं तो आपके द्वारा होती है। और साथ में एक खुशी की बात यह है कि हमारे ये पंजाब के ही हैं। बहुत अच्छी पंजाबी बोलते हैं, तो ये हमें हमारे बीच में अभी राजयोग के द्वारा अष्ट शक्तियों की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं हमारे बीच में ये विषय रखेंगे भ्राता अशोक।
ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारे इस राजयोग शिविर का ये अंतिम सत्र है, और जब भगवान के घर से जाना होता है तो कुछ ना कुछ भगवान आपको स्वागत तो दे के ही भेजेगा। तो आज बाबा के घर से आप विशेष अष्ट शक्तियों की सौगात लेकर जाएंगे, जो जीवन भर हर पल आपको हर कदम पर मदद करेगी और जीवन में सफलता का आधार बन जाएगी। योग में सबसे पहली बात हम क्या सीखते हैं, सबने राजयोग पूरा शिविर किया है, सबसे पहली बात क्या सिखाई, आत्मा। बहुत अच्छी बात है। जब आप आए थे तो किसी को पूछते थे आप कौन हैं, तो मैं वीके गर्ग हूं, मैं मित्तल हूं, या मेरा नाम गुरजीत सिंह है, मेरा नाम वेंकट रामन है। आज आपसे पूछे आप कौन है तो सब एक ही बात कहेंगे कि मैं आत्मा हूं और ये मेरा शरीर है, मेरे शरीर का नाम गुरमीत सिंह है। इतना फर्क पड़ जाता है यहां से जाने के बाद। मगर ऐसा मत कीजिए जब वहां जाएं और आपसे कोई पूछे कि आपका नाम क्या है तो बोले मेरे शरीर का नाम ये है, तो आते बोलेंगे जरूर रोमा कुमारियों का कुछ इनको असर हो गया है। जो भी ज्ञान की बात होती है वो सब समझ की बात होती है, और समझ करके उसको जीवन में धारण करने की बात होती है। एंड स्पेशली इट इज ए लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस विच वी हैव रेस्ड। आवर बेसिक कॉन्शियसनेस हैज बीन चेंज फ्रॉम बॉडी कॉन्शियसनेस टू सोल कॉन्शियसनेस। जब हम हिंदी में बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि आध्यात्मिक चर्चा हो रही है, योग की शक्तियों की बात करेंगे, और उसको जब अंग्रेजी में अनुवाद कर देंगे तो फिर वो मॉडर्न मैनेजमेंट की सेल्फ मैनेजिंग लीडरशिप या लीडरशिप एटीट्यूड्स में चेंज हो जाएगा। ये बहुत बड़ी विचित्र बात है कि बहुत समय से हम इस बात को जानते थे कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है, लेकिन फिर भी हिंदुओं का अलग था, मुसलमानों का अलग था और क्रिश्चियंस का अलग था। ये तो बाबा नानक ने आकर के जरूर सबको अच्छी तरह से क्लियर कॉन्सेप्ट कर दिया, नहीं तो सब अपना अलग अलग ही चला रहे थे। बट बेसिकली हिंदी में कह दो परमात्मा ज्योति स्वरूप है तो हिंदुओं का, इंग्लिश में अनुवाद कर दें गॉड इज लाइट तो क्रिश्चियंस का, उर्दू में कह दें खुदा एक नूर है तो मुसलमान भाइयों का। बहुत सिंपल सिंपल बातें आपने यहां सीखी हैं, लेकिन उनको जीवन में अपनाएंगे तब सिमर सिमर सुख पाने की बात हमें समझ में आएगी। सबसे पहली बहन जी बता रही थी आज आपको अष्ट शक्तियों की बात सुनाई जाएगी, लीडरशिप क्वालिटीज की बात बताई जाएगी। सबसे पहले जब हम अपने को आत्मा समझते हैं तो खुद से बात करना सीखते हैं, हमारी आत्मा में मन बुद्धि संस्कार जो तीन फैकल्टीज हैं उनकी आपस में चर्चा करना सिखाते हैं, अपने मन और अपनी बुद्धि आपस में बातचीत करें, दैट इज कॉल्ड टॉकिंग टू योर सेल्फ, खुद से बात करना सिखा देते हैं। और दूसरा स्टेप क्या होता है योग का? पहला स्टेप तो खुद से बात करना सीख गए, दूसरा खुदा से बात करना सिखा देते हैं, आपस में बातचीत कम कर देते हैं और खुद से और खुदा से बात करना सिखा देते हैं। बैठे तो साइलेंस में हैं लेकिन खुद से तो बात कर ही सकते हैं साइलेंस में रह के, सूक्ष्म कर्म करना सिखाते हैं। और संकल्पों की भाषा में बात करना हम सीख जाते हैं। बहुत सी भाषाएं हमारे देश में हैं लेकिन भगवान की भाषा संकल्पों की भाषा है, भावनाओं की भाषा है। भगवान से जब हम बात करते हैं तो दिल की भावनाओं से बात करते हैं, तब दिल को दिल से राह हो जाती है। हम उसे कितने रूह रहान करते हैं जिससे रूह को राहत मिलती है। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं लेकिन बहुत सरल और सहज हैं जीवन में अपनाने के लिए। और जब यहां आ जाते हैं तो सारे संसार की संसार से बुद्धि हट जाती है और हम स्वदर्शन करना शुरू कर देते हैं। पर दर्शन, संसार का दर्शन तो सदा करते रहे, विस्तार को संकीर्णता में समा लेते हैं। ये तो बहुत बुद्धि इधर उधर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का समय है, यू नो देयर इज अ ब्लास्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अस, उसमें से कौन सी बात हमको जीवन में अपनानी है वो सीख जाते हैं, उसको प्रायोरिटाइज करके सिलेक्ट कर लेते हैं। और ये असिमुलेट करना, असेस करना, प्रायोरिटाइज करना ये डिसीजन मेकिंग का एक प्रोसेस कहलाता है। सबसे बड़ी बात जीवन में होती है श्रेष्ठ कर्म करना, और उससे पहले निर्णय लेना होता है कि श्रेष्ठ कर्म है क्या। जैसे दो मित्र थे, एक क्लास में पढ़ते थे, एक आईएएस अफसर बन गया और एक तपस्वी बन गया, और दोनों में एक बार चर्चा छिड़ी कि श्रेष्ठ कर्म करना, अच्छे कर्म करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीवन में या बैठ के योग लगाना, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा? अच्छे कर्म करना स्वाभाविक है। अब दोनों में चर्चा छिड़ी, तपस्वी कहे नहीं नहीं बैठ के योग लगाना बहुत जरूरी होता है, और वो कहे अरे क्या बैठा बैठा चुप करके सुबह बैठा रहता है, अपना टाइम वेस्ट करता रहता है, कुछ काम किया कर। दोनों पहुंचे गुरु जी के पास, गुरु तो उनका ही था, तो उन्होंने पूछा गुरुदेव बताएं इन दोनों में से कौन सा काम ज्यादा श्रेष्ठ है, अच्छे कर्म करना या बैठकर योग लगाना। तो गुरु जी मुस्कुराए कि भाई आईएएस बच्चा जो है ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, दुनिया तो आपके कर्मों को ही देखती है, इसलिए समाज सेवा करना, श्रेष्ठ कर्म करना ये बड़ी बात है। तो आईएएस बड़ा खुश, वैसे ही थोड़ा आईएएस का कॉलर ऊंचा होता है हमारे देश में तो खास तौर पे। जब ब्रिटिश टाइम था तो यू आर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट लिखते थे, जब कलेक्टर साहब चिट्ठी लिखते थे ना, आजकल तो योर सिंसियरली लिखते हैं, तब लिखते थे योर्स मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, ऐसा करके लिखा जाता था, ओबीडियंटली शब्द आता था। मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट तो भगवान यूज करता है, योर्स ओबीडियंटली ऐसा इन पब्लिक सर्विस, ऐसा करके शब्द लिखे जाते थे, अब सिर्फ सिंसियरली लिख दिया जाता है। तो बहुत खुश हुआ वो, और फिर गुरु जी ने मुस्कुरा के दूसरे बच्चे की ओर देखा है, उसको बोला देखो बच्चा तू जो बैठ के योग लगाता है ना वो भी बहुत आवश्यक है। फिर वो आईएएस देखने लगा कि ये क्या बोलने लगे गुरु जी कि तुझे विचित्र लग रहा है, तुमने कहा कि श्रेष्ठ कर्म करना बड़ा आवश्यक है लेकिन कर्म श्रेष्ठ है या नहीं है ये कैसे पता लगेगा? चिंतन से। और अगर श्रेष्ठ कर्म करने की इच्छा भी है लेकिन क्या हर श्रेष्ठ कर्म कर पाते हो तुम? नहीं गुरुदेव, सब तो नहीं हो पाते। क्यों? एनवायरमेंट ही ऐसा है, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, लोग कहां करने देते हैं। इसे ऐसा नहीं है, यू लैक इन योर विल पावर टू डू इट। अगर आपके अंदर मजबूत विल पावर किसी काम को करने की होती है तो वो होता है। हाँ वो तो हो ही जाता है तो बच्चे ये विल पावर कहां से आएगी? पहली बात, श्रेष्ठ कर्म है या निकृष्ट है इसका निर्णय कैसे होगा, और फिर श्रेष्ठ कर्म करने की विल पावर कहां से आएगी जो तुम कर सको? वो साधना से आती है। इसलिए पहले सुबह सुबह बैठकर साधना करना बहुत आवश्यक है, फिर दिन भर श्रेष्ठ कर्म कर सकोगे। बस यही है राजयोगी जीवन, कि सुबह सुबह प्रातः काल अमृत वेले बैठकर हम चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन कर लेते हैं, उससे हमारी बुद्धि को शक्ति मिल जाती है। शिव शक्ति की बात गीत में सुन रहे थे कि सबसे बड़ी शक्ति शिव शक्ति है, और उससे हमें दिव्य गुणों की धारणा होती है और हम मोती बन जाते हैं। जिसमें दिव्य गुणों की धारणा होती है उसे ही मोती कहते हैं। तो पहली शक्ति हम लें, कछुआ देखा सबने? कछुआ देखा है? क्या करता है कछुआ जी? अपने अंगों को सिकोड़ के हमेशा रखता है, बस ऐसे ढेला सा गोल सा बैठा रहता। लेकिन जैसे ही कोई खाने की वस्तु आप फेंकी तालाब में, फट हाथ पैर उसके निकलेंगे, आएगा, उठाएगा, मुख में डाला, फिर वापस। उतना ही देर कर्मेंद्रियों को खोलता है जितनी देर कर्म करने के लिए आवश्यकता हो, अदरवाइज उसको समेट के सिकोड़ के रखता है, यानी विस्तार को संकीर्ण करने की उसमें एक स्वाभाविक शक्ति होती है। योगी क्या करता है? अपने संकल्पों को बाहर के विस्तार से संकीर्ण कर लाता है और स्वयं में अंतर्मुखी बन जाता है। इसलिए कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी। कछुए की आयु पता कितनी होती है? 400 वर्ष। हमें ऋषि मुनि आशीर्वाद देते हैं शतम वर्ष जियेत, आयुष्मान भाव। आयुष्मान भाव का उसका भाव होता है कि 100 साल जियो, और कछुआ 400 साल जीता है। मैं एक बार नॉर्थ ईस्ट में गया था, एक बहुत सुंदर स्थान देखने को मिला। वहां एक मंदिर है, उदयपुर शहर है वहां, जैसे हमारे यहां से 2 घंटा दूर उदयपुर शहर है, ऐसे ही त्रिपुरा में स्टेट में भी एक उदयपुर शहर है, और उसके पास एक त्रिपुरेश्वरी देवी का मंदिर है। त्रिपुरेश्वरी कहते हैं उसको, जो तीनों पुरियों की मालकिन हो, ऐसी देवी का मंदिर है, और वो कुछ ऊंचाई पर बना हुआ है, उससे करीब 100 सीढ़ी नीचे एक तालाब बना हुआ है। उस तालाब में बहुत बड़े बड़े कछुए हैं। मैंने बहुत देवी देवताओं की यादगार आपने भी देखी, हमने भी देखी, महापुरुषों की यादगार देखी, लेकिन कहीं कछुओं की यादगार आपने देखी है? उन कछुओं की विशेषता यह है कि उनको जब आप डालते हैं बस ऐसे ही होते हैं, सिमट के बैठे हुए हैं। किसी ने कुछ खाने की चीज डाली, हाथ पैर निकाले, फटाफट आया, खाया, फिर वापस वैसा का वैसा आपके सामने ही जाके बैठ जाएगा, शांत गंभीर। लेकिन जब 350-400 वर्ष की आयु उसकी पूरी होती है तो वो कछुआ वो 108 सीढ़ियां चढ़ता है। 100 सीढ़ी ऊपर मंदिर है, करीब 108 सीढ़ी कह दें, वो सारी सीढ़ियां एक एक करके धीरे धीरे वो कछुआ, 400 वर्ष का कछुआ, वो सीढ़ी चढ़ता है। कोई 300 का, कोई 350 का, कोई 400 का, ऐसी एज वेरिएशन उनकी 300 से 400 साल, और उनके पास रिकॉर्ड्स हैं पूरे पुराने कछुओं के। और वो धीरे 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 एक 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 एक, एक सीढ़ी चढ़ता हुआ, 400 वर्ष का बुढ़ा आदमी पहले तो सीढ़ी चढ़े, इतनी उसने अपने संचित थोड़ी सी शक्ति बचा रखी होती है। और वो पूरी 100 सीढ़ियां चढ़ने के बाद मंदिर के सामने आता है, देवी के सामने सिर झुकाता है और शरीर छोड़ देता है। उस जानवर में भी ऐसी विशेषता उसके अंतर में निहित है कि वो लास्ट मोमेंट के लिए इतनी एनर्जी बचा के रखता है कि पूरी 100 सीढ़ी चढ़ता है। इतना भारी बड़ा शरीर होता है उसका, अब बुढ़ा तो है ही, 350 साल से ज्यादा बुढ़ा और क्या होगा, फिर भी 100 सीढ़ी चढ़ता है और देवी के मंदिर के आगे सिर झुका के शरीर त्यागता है। और जब शरीर त्यागता है तो उसकी बाकायदा वहां यादगार बनाई जाती है। हमने बड़े बड़े क्रिश्चियन फादर्स, प्रीस्ट या सोल्जर्स, जनरल्स होते हैं, उनकी आपने यादगारें देखी होंगी। बड़े बड़े मौलाना लोग होते हैं, उनकी कब्र बनाई जाती है, प्रीस्ट होते हैं, फकीर होते हैं, उनकी यादगार बनती है, लेकिन वहां कछुओं की यादगार बनती है। और बाकायदा जो 7-8 कछुए पिछले 100 साल में जिन्होंने शरीर छोड़ा हुआ है, सबकी एक एक की उसके नाम से इतने की यादगार बना रखी है वहां, तो कछुए की भी यादगार होती है। लेकिन उसकी विशेषता की वजह से कि कैसे वह अपने विस्तार को संकीर्ण करके अपने आप में समाया रहता है, उसकी ऑब्जर्वेशन इतनी फास्ट होती है कि चीज जैसे गिरी फट से उसने खाई फिर वापस। योगी भी ऐसे ही करता है, अंतर स्वरूप में आत्म स्वरूप में स्थित रहता है, कर्म करने की जब आवश्यकता हुई तो कहते हैं वतन से नीचे उतरो फरिश्ते की तरह, मदद करो लोगों की और वापस। फरिश्ते की क्या विशेषता होती है, कहीं से आता है मदद करके चला जाता है, उसे फरिश्ता कहते हैं। लोग तो कहते हैं परियां होती हैं, पर लगे होते हैं, ऊपर से आता है, हमारे बीच में से ही कोई आ जाता है और हमारी मदद करके चला जाता है, उसको हम याद रखते हैं, कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता आपसे। तो ऐसा योगी का जीवन होता है, अपने आप में अंतर में निहित संसार के विस्तार को संकीर्ण करने वाला, बट हाईली ऑब्जर्वेंट। अगर आपका साइलेंस का नेचर हो तो आपकी लिसनिंग पावर बहुत अच्छी हो जाती है और आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत सुंदर हो जाती है, तो विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति होती। दूसरी बात, बिस्तर पेटी पैक पड़ा हुआ है, समेटने की शक्ति कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इज एवर रेडी, ऑलवेज अवेलेबल टू डू एनी एक्शन, टू टेक एनी डिसीजन। फौजी, आपको डिस्कवर फिल्म दिखाई गई, उसमें दिखाते हैं शक्तियों में से समेटने की शक्ति के लिए एक परिवार में लोग बैठे हैं, फोन बजता है और उसमें आर्मी का मेजर बैठा होता है, तो मेजर साहब यूनिफॉर्म पहन के खाना खा रहे थे, फट से फोन उठाते, सर, उधर से हुक्म आता, यू गॉट टू मूव नाउ स्ट्रेट टू द ऑपरेशनल एरिया, सर। फटाफट बिस्तर पेटी लेके आता है, उसकी पत्नी उसको तिलक लगाती है और मेजर साहब चल देते हैं ड्यूटी पर। फौजी की तरह एवर रेडी। मुझे अपना भी याद है, जब वायुसेना में थे तो ऑफिस में एक ब्रीफ केस पैक रखता था, ट्रांसपोर्ट स्क्वाड्रन में जॉब थी, किसी भी समय 45 मिनट्स नोटिस पर मूव करना होता था, और उसमें एक ड्रेस और थोड़ी सी कोई खाने की टोली रखते थे हम, क्योंकि जब जाएंगे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तो लंबी फ्लाइट पे जाता है, पायलट्स को कोई देखभाल करने वाला तो चाहिए, जब थक जाए तो उसको टोली खिला दो, और पायलट खुश हो जाता था क्योंकि उसकी थकावट दूर करने में मदद करती थी, उसका शुगर लेवल अपलिफ्ट हो जाता था। सो एवर रेडी, यानी जिसको संस्कार समेट कर जिसने अपने रखे हों, जिसका मन इधर उधर फैलाव में ना हो, वो एवर रेडी स्थिति, या जिसकी समेटने की शक्ति मजबूत हो वो एवर रेडी जिंदगी में रह सकता है। तो योगी की पहली विशेषता विस्तार को संकीर्ण करने वाला, हाईली ऑब्जर्वेंट। दूसरा सिमटा हुआ, जिसने अपने, जैसे ऑफिसर्स में कहते हैं, द वन एन ऑफिसर इज अ गुड वन इफ ही हैज डेलीगेटेड हिज ड्यूटी टू अदर्स सो दैट ही इज फ्री टू टेक डिसीजन एट एनी टाइम, ही इज ऑलवेज अवेलेबल। मैं अंग्रेजी भाषा में आऊंगा तो आपको पता लगेगा कि योग की शक्तियों का जीवन में क्या उपयोग है। तो ये 3-4 शक्तियां पहली ऐसी हैं जो हमें बनना होता है, वी हैव टू बी दैट। और अगर आप तपस्वी बन जाते हैं, राजयोग सीखते हैं, तो स्वाभाविक आपको विस्तार को संकीर्ण करना तो आ ही जाता है, क्योंकि आप अंतर्मुखी हो गए, बाहर के विस्तार से संकीर्ण हो गए। समेटने की शक्ति, संकल्पों को संसार से समेटकर ऊपर, ट्रैफिक कंट्रोल का रिकॉर्ड यहां बजता है, देखा आपने, बताया गया आपको ट्रैफिक कंट्रोल रिकॉर्ड बजता है यहां 2-2 घंटे में। क्या करते हैं हम, वी स्टॉप ए वाइल एंड वी डू एन इनवर्ड जर्नी एंड अपवर्ड जर्नी, दैट्स व्हाट मेडिटेशन इज, अंतर्मुखी चिंतन और ऊर्ध्वगामी चिंतन, प्रभु चिंतन शुरू कर देते हैं। तो इधर उधर से संकल्पों का ट्रैफिक समेट लेते हैं और अपने अंतर में जाकर ऊपर ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाते हैं और उससे शक्ति ले लेते हैं। फिर एक मिनट बाद पूरा हुआ, फिर एक्शन में तुरंत आ गए। It keeps you ever ready with full strength for your actions. तीसरी है, एक पेड़ दिखाई दे रहा, बच्चा पत्थर फेंक रहा है, क्या रिजल्ट होगा? जी, फल मिलेंगे। आपको कोई पत्थर मारे तो फिजिकल पत्थर तो नहीं लोग मारते, जबान से पत्थर मार देते, बहुत कॉमन है हमारे समाज में। लोग सकचाते नहीं है जबान से पत्थर मारने में, और ये 3 इंच की जबान एक ऐसी है जिसमें कोई हड्डी नहीं है, लेकिन अच्छे अच्छों की हड्डियां तोड़ देती है। पत्थर मारा माना हड्डी तो टूटनी चाहिए। बाबा के समय में क्या होता था, किसी बच्चे किसी ने कुछ कह दिया तो जाएगा, बाबा देखो उसने मुझे ऐसा कहा, तो बाबा प्यार से बच्चे को बैठा करता, अच्छा बाबा उसने देखो ऐसी बात कही जैसे पत्थर मारा, अच्छा बच्चे उसने तेरे को पत्थर मारा है, अब ऐसे ऐसे हाथ लगाए, कहां चोट कहां लगी बच्चे, चोट कहां लगी? और फिर बाबा कहता था, बच्चे बाबा का बच्चा तो वो होता है जो गाली देने वाले के गले में भी हार पहना दे। तुम अपने मुख से मधुर वाणी बोलकर उसके गुस्से को दूर कर दो, अपकारी पर भी उपकार करो तो समझो कि बाबा के बच्चे हो। भगवान की सबसे पहली विशेषता है ये। हम सब ने क्या क्या किया द्वापर युग से, और तो और उसको भी जम के गालियां दे दी, कंकर में, पत्थर में, चूहे में, बिल्ली में, कुत्ते में, सब जगह जहां दिल आया डाल दिया उसे। कभी गुस्सा आया उसे अज्ञानवश, ड्रामानुसार बच्चों ने कह दिया, कोई बात नहीं। सामने वाला क्रोध कर रहा है और ब्रह्मा कुमार मुस्कुराता रहता है, बेचारा अज्ञानवश चिल्ला रहा है। एक बार एयरपोर्ट पे थे हम लोग, कोई मेहमान आ रहा था, हमारा नीचे आबू रोड में छोटा सा एयरपोर्ट है, कोई गवर्नर साहब आने वाले थे कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए, तो नीचे भोपाल भाई हमारे मैनेजर हैं शांतिवन के, वो थे साथ में, था मैं, दो बहनें थी हम, 4 गुलदस्ते लिए हुए रिसीव करने गए, एक भाई फोटो खींचने वाला भी साथ था। तो जैसे हवाई जहाज के आने का टाइम हुआ, नेचुरली सबको चाव होता है कि हवाई जहाज दिख रहा है, लोग हवाई पट्टी की तरफ बढ़ते हैं कि जहाज, जैसे जहाज से उतरेंगे गवर्नर साहब हम उनको अभिनंदन करेंगे गुलदस्ता देने के लिए। तो चाव में सब आगे बढ़ रहे थे। अब प्रोसीजर ये होता है कि गवर्नर पहले उतरेगा तो उसको पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, कलेक्ट्रेस भी रिसीव करेंगे, और उसके बाद जो भी पब्लिक मिलने आती है उसको मिलने दिया जाता है। आई न्यू द प्रोटोकॉल, बट वो भाइयों को चाव होता है तो नेचुरली सब, दोनों बहनें और गोपाल भाई और सब आगे बढ़ने लगे। तो कलेक्टर साहब दूर से चिल्लाए, एसपी टेल देम नॉट टू कम क्लोज टू द एयरक्राफ्ट। तो एसपी को भी जोश आया कि भाई कलेक्टर साहब ने कहा, इंस्पेक्टर उसने थानेदार को बुलाया, एस एच ओ गो एंड टेल देम वहां दूर लाइन में खड़े हूं। तो दोनों खूब अपना जोश में बोल रहे थे, इंस्पेक्टर साहब आए हमारे पास, पीछे उठिए पीछे उठिए, आप कहां जा रहे हैं, आप वहां नहीं जा सकते। वैसे तो उस एयरपोर्ट को हम लोग मेंटेन करते हैं खुद, इसलिए थोड़ा स्नेहवश आगे बढ़ रहे थे लोग। मैंने कहा देखो ऐसा है भोपाल भाई, सीनियर है हमसे बहुत, हम सब पीछे लाइन में खड़े हो जाएंगे, वो गार्ड ऑफ ऑनर होगा ना, फिर वो आएंगे तो फिर हम उनको फूल देंगे। अच्छा अच्छा ठीक है भाई। तो आराम से भाई बहने लाइन में लग गए और मुस्कुरा रहे हैं। तो कलेक्टर से भी कहता है, अरे वी ब्लास्टेड ऑन देम एंड दीज गाइज आर स्टिल स्माइलिंग। इंग्लिश बोलता था कि हमें, तुमने हमारे सचिव ने उसको प्रति जोर से शाउट किया, पिछड़ो पिछड़ो, और ये लोग स्माइल कर रहे हैं, इनका चेहरा उतरा नहीं यार। एसपी साहब कहते हैं, सर यही तो विशेषता है इन ब्रह्मा कुमारी वालों की, ये मुस्कुराते ही रहते हैं, आप कुछ भी कह लो इनको, इन पर कोई असर ही नहीं होता। इस प्रकार का एक स्वाभाविक नेचर। अब वो कलेक्टर तो नया नया आया था, कोई साउथ इंडिया का था, उसको कोई संस्था से लेने देना भी नहीं था, और थोड़ी देर बाद वो आगे बढ़कर आता है वही इंस्पेक्टर कि सर क्या बात है भाई, कलेक्टर साहब ये गुलदस्ता मांग रहे हैं, तो वो तो गुलदस्ता तो लाया ही नहीं और हमको तो यहां मिला नहीं, आप इतना सुंदर गुलदस्ता कहां से लाए। वो एसपी को बोल रहा कि यार इनका गुलदस्ता बहुत सुंदर है, मैं भी एक दूंगा गवर्नर को। तो जैसे ही उसने भेजा, इंस्पेक्टर ने फटाफट गुलदस्ता दे दिया। फिर दो मिनट के बाद आया इंस्पेक्टर, अरे एसपी साहब की बहुत दिल है, वो भी गुलदस्ता देना चाहते, दूसरा भी ले लो। गोपाल भाई ने भी दे दिया, हमने भी दे दिया, फिर भी आराम से मुस्कुरा रहे हैं हम लोग। फिर वो कहता है, अरे हमने इनके गुलदस्ते छीन लिए, ये फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। कि सर यही तो इनकी विशेषता है। थानेदार बोले कि मैं तो सर इनके साथ रहता हूं सुबह शाम रात, इनको आप कुछ भी कर लो सर, ये मुस्कुराते ही रहते हैं। यानी आपने उनका गुलदस्ता छीन लिया जो हम गवर्नर को रिसीव करने जा रहे हैं, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं प्यार से। और हम लोग आपसे बात करें, अच्छा किया यार, उन लोगों को प्यार से रिसीव कर रहे हैं तो खुश हो जाएंगे, हमारी तो बहनें हैं ना, हमारी बहनें रिसीव करेंगी, भाइयों की क्या बात है। विदनेस, जब बहनों के पास गुलदस्ता जब तक है तब तक हमें कोई चिंतन करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि हम मैनेजर हैं, फलाने हैं, ये हैं, वो उसने, वो ये कलेक्टर है ना एसपी, इसको डिजिग्नेशन के हिसाब से करने दो। तो इस प्रकार कोई पत्थर भी मारता है तो उसको फल नहीं तो फूल तो दे ही सकते हैं। ऐसा नेचर योगी का स्वाभाविक हो जाता है। पेड़ के नीचे लकड़हारा भी अगर आएगा उस पेड़ को काटने वाला, फिर भी पेड़ उसको छाया ही देगा। ऐसा सहनशील हो जाता है योग। चौथी बात, समुद्र में नदियां मिल रही हैं, चारों तरफ का कचरा आ रहा है समुद्र में, और समुद्र सब संभालेगा, कुछ नहीं कहता नदियों को। ये नहीं कहते ये क्या कचरा लेकर के मेरे में आ रही है, नदियां हैं, इनका काम है कचरा लेके आना, मैं तो सागर हूं, समा लेना और वैसा का वैसा ही रहना। समाने की शक्ति, ये चार शक्तियां योग लगाने से स्वतः आती हैं, क्योंकि आप योग में अपने को आत्मस्वरूप में स्थित करके अपने पिता को बड़े प्यार से याद करते हो, और हमारा लक्ष्य होता है बाप समान बनने का, जैसा मेरा बाप वैसे बच्चे, यही है योगी का लक्ष्य। पिता तो सागर है, हम बच्चे मास्टर सागर तो बन जाए। तो ये चार बातें स्वतः आती जाती हैं। अगर आपका चिंतन अंतर्मुखी चिंतन है तो विस्तार अपने आप संकीर्ण हो जाएगा। अगर आप आत्मस्वरूप में स्थित हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन तो अच्छी है ही, यू विल इमीडिएटली बी रेडी टू डू एनी एक्शन एट एनी टाइम नीडेड। टॉलरेंस एब्सोल्यूटली नेचुरल। स्वस्वरूप में स्थित होते ही लोग कुछ भी कहें, कैसे भी पत्थर फेंके जुबान से, आप उनको मुख से फूल ही बरसाते। उसने झटका दे के पीछे भेजा और उसके बाद डिमांड की गुलदस्ते की, मुस्कुराते हुए दे आए, ले लो ले लो, आप ही ले लो। गवर्नर साहब तो हमारे ही है ना, फूल तो उन्हीं को देने, मैंने दिए या कलेक्टर ने दिए क्या फर्क पड़ता। और गवर्नर्स भी सब अच्छी तरह जानते हैं, यहां के अधिकारियों को कहीं फूल अच्छे नहीं मिलते, जरूर उन्होंने ब्रह्मा कुमारी से लिए होंगे। सब अच्छी तरह जानते हैं लोग, इसलिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, स्वतः ही होता है। सहने से, समाने से आप दूसरे का दिल जीत लेते हैं। वही जो पहले चिल्ला रहा था वो बाद में शर्मा रहा था। जब गुलदस्ता उसने मांगा और सहर्ष उसको दिया गया तो उसका सिर नीचे झुका हुआ था। कलेक्टर वही, एसपी वही है, यूनिफॉर्म पहनी, अकड़ पूरी, कॉलर ऊंचा, लेकिन सिर नीचा हो गया। तो अगर आप में ये चार गुण सहज रूप में आ जाएं, एक तो आपको अपने व्यवहारिक जीवन में कितना उसका लाभ होता है। नेक्स्ट, परखने की शक्ति। थोड़ा क्रॉस भी है, एक अच्छे से एकदम डायगनली अपोजिट आ जाएं। इफ यू हैव ए नाइस ऑब्जर्वेशन पावर यू कैन बी अ वेरी गुड ऑब्जर्वर। आपकी परख शक्ति बहुत अच्छी रहती है। अब कर्म करने की बात आ गई। ये चार बातें ऐसी थी जो हमें बनना होता है, और योगी बनने से हम ऐसा बन जाते हैं। योग लगाने से विस्तार को संकीर्ण करना, समेटना, सहना और समाना आ जाता है, क्योंकि योग का प्रोसेस ही ऐसा है। और अब एक्शन में जब आते हैं तो इफ यू आर ऑब्जर्वेंट यू कैन हैव वेरी गुड पावर टू असेस, जजमेंट करने की पावर आपकी बहुत अच्छी हो जाती है परिस्थितियों को। नेक्स्ट, निर्णय करने की शक्ति। अच्छी तरह परिस्थिति को भांपा हुआ होता है तो फिर निर्णय भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो योगी को निर्णय करने की शक्ति स्वाभाविक रूप में आ जाती है, वो जीवन में निर्णय ले सकता है। तीसरा, सामना करने की शक्ति। दिखाया है एक मुर्दा जा रहा है, राम नाम सत्य बोला जा रहा है, हम लोग क्या करते हैं जब ऐसा होता है? तो पहले सिर झुका देते हैं, सत्कार कर देते हैं, फिर सिर को ढक लेते हैं। आमतौर पर कि बेचारा जा रहा है, लेकिन तपस्वी ऐसा नहीं सोचता। किसी का मर गया, दुखी हो रहे हैं, वो भी दुखी होना शुरू हो जाएगा। तपस्वी बहुत सीधा सीधा सोचता है कि रथ जा रहा है, अरथी जा रही है, जिसमें अब रथ, जिसमें जो रथी आत्मा थी वो तो निकल गई, क्योंकि उसको वो ज्योति हमेशा दिखाई देती है और वो जानता है कि वह विनाशी है, उसका विनाश नहीं हो सकता। अरथी जा रही है, उसका सम्मान वो भी करेगा, लेकिन उसके मन में कोई गम पैदा नहीं होगा, क्योंकि वो मौत को मौत नहीं समझता है। केवल आत्मा के शरीर को निकलने की प्रक्रिया ही तो मौत कहलाती है। जब मैं आत्मा हूं तो अविनाशी भी हूं, यानी मौत की परिस्थिति का सामना करने की भी उसमें शक्ति होती है। कि ये बुजुर्ग की आत्मा जो गई, वो किसी के घर में छोटा बच्चा बन करके नई रोशनी ला रहा होगा। बिकॉज सोल इज इटर्नल, ए कंटिन्यूटी प्रोसेस इज देयर। तो डेथ की स्थिति को भी सामना करने की उसमें सह शक्ति आ जाती है। एंड लास्ट क्या दिखाया? एक पर्वत दिखाई दे रहा और नीचे बहुत से हाथ लगे हुए। गोवर्धन पर्वत की बात आपने सुनी है, जब बहुत भयंकर वर्षा की, इंद्र ने उत्पात मचाया देखने के लिए कि श्री कृष्ण में कितनी शक्ति है। तो श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर पहाड़ उठा लिया और सब गांववासियों को बोला आ जाओ नीचे। तो गांववासियों ने क्या किया? क्या किया? अरे देखा कन्हैया ने, इतना बड़ा पर्वत उठा लिया, फटाफट अपने अपने डंडे लगा दिए नीचे। सबके पास अपना अपना डंडा होता है, गांव में तो डंडा रखना ही पड़ता है क्योंकि आपने जानवरों को चराने जाना है। गांव में तो जहां भी जाना एक डंडा सब रखते ही है। सबने अपने अपने डंडे नीचे रखा दिए, अरे हमारे कन्हैया का हाथ नहीं टूट जाए। लेकिन पहला हाथ तो कन्हैया नहीं बढ़ाया था उस पर्वत को उठाने के लिए, और सब उसके ऑटोमेटिक सहयोगी बन गए। यानी आप सहयोग दें, तुरंत लोग सहयोग देना शुरू कर देते हैं। योगी का तो काम ही है सहयोग देना। उसके बाद एसपी कलेक्टर हमारे बहुत गहरे मित्र बन गए। दोनों नए थे, नहीं जानते थे संस्था को, सिर्फ एक जरा सी गतिविधि से मित्रता भाव आ जाता है। यू गिव हेल्प, हेल्प ऑटोमेटिकली कम्स इन रिटर्न। जो मदद करोगे तो मदद मिलेगी। बहुत सीधी सी बात है, बहुत सरल काम है। जब आप बहुत स्ट्रेस में हो, तनाव बहुत हो रहा हो किसी भी कारण से, किसी आते जाते की थोड़ी सी मदद कर दीजिए। कोई अंधा दिखाई दे, उसका हाथ पकड़ के सड़क पार करा के आ जाइए, आकर देखिए अपनी स्थिति। आई कैन अश्योर यू विथ श्योरिटी दैट योर स्ट्रेस विल गो। कभी करके देखिए। बहुत छोटी सी बात कह रहा हूं मैं, जब भी आप स्ट्रेस में हो, आपको समझ ना आ रहा हो मैं क्या करूं अब, किसी भले आदमी की थोड़ी सी मदद करके आ जाइए। इतनी ताकत होती है स्ट्रेसफुल व्यक्ति में भी कि वो किसी अंधे का हाथ पकड़ के सड़क पार करा दे, या किसी को कोई छोटा मोटा काम उसकी मदद कर दे, और उसका तनाव दूर हो जाता है। ऐसी सहज युक्तियां आपको कोई सिखाने वाला नहीं है। लोगों को गुस्सा आ रहा हो तो पानी पी लेना चाहिए। कौन पानी पीता है? जब गुस्सा आ रहा हो तो गिलास उठा के फेंक देते। लेकिन अगर आप अकेले तनाव में बैठे हैं, आपको समझ ना आ रहा हो मैं क्या करूं, तो सिर्फ बाहर देखिए कि कोई दुखियारा थोड़ा बहुत कोई काम में आपकी मदद चाहता है, किसी आदमी से कोई चीज नहीं उठाई जा रही, उसको उठाने में मदद कर दीजिए। कोई मजदूर खड़ा बेचारा अपना सामान नहीं उठा पा रहा, जस्ट हेल्प हिम अ बिट। ए स्मॉल लिटिल एक्टिविटी ऑफ हेल्प विल टोटली चेंज योर मेंटल स्टेट। आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी जल्दी तनाव दूर हो गया जरा सी बात से, लेकिन सचमुच होता है। हम आपको सिर्फ उतनी बातें बताते हैं जो जीवन में की हुई होती। तो आज शक्तियां हमें योग की कौन कौन सी मिली? विस्तार को संकीर्ण करने की, समेटने की, सहने की, समाने की, परखने की, निर्णय करने की, सामना करने की और सहयोग की। ये आठ शक्तियां हमको योग से प्राप्त होती हैं। राजयोग की प्रक्रिया ही ऐसी है कि पहले चार कदम संकीर्ण करने के, समेटने के, सहने के और समाने के योग की प्रक्रिया में समाये हुए हैं। योग तो तभी शुरू होता है जब हम बाहर से अपने संकल्पों को समेट संकीर्ण भी कर देते हैं कम करके, फिर टोटली समेट के अपने अंतर में आ जाते हैं और फिर ऊपर उन्मुख करते हैं, और जो शक्ति आती है उसमें स्वतः ही सहना और समाना स्वाभाविक बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। अब मैं थोड़ा अंग्रेजी भाषा में बोलना शुरू करूंगा। नाउ आई एम गोइंग टू कम टू द टॉपिक ऑफ लीडरशिप एटीट्यूड्स। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोलूंगा ताकि आप सबको समझ आ जाए, लेकिन मैं इंग्लिश इसीलिए बोल रहा हूं कि जब हम लीडरशिप क्वालिटीज की बात करते हैं, मैनेजमेंट स्किल्स की बात करेंगे, क्योंकि हमारे में काफी अधिकारी लोग भी हैं और सबसे बड़ी बात तो इतनी महिलाएं हैं, इतनी बहनें हैं। सबसे अच्छी मैनेजमेंट तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में होती है, तो बहनें ही करती हैं। कैसा लगता है आपको यहां आकर? बहुत अच्छा माना क्या? अच्छा जी, अरेंजमेंट भी देखने वाले बहुत चंगे हो, निस्वार सेवा होती। चलो अभी हम थोड़ा लीडरशिप क्वालिटीज पर आ जाएं कि क्या क्या लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्या एक लीडर में बहुत अच्छी अच्छी क्या क्या क्वालिटीज आप सोच सकते हैं, सुनाते जाइए एक एक करके। जी, डिसिप्लिन, गुड, यस डिसिप्लिन। कोई बहन बोले? हैं जी, पंक्चुअलिटी, गुड। और हैं जी, साहस, करेज, गुड, कॉन्फिडेंस। हैं जी, एक 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 हाथों से दसो। प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, नॉलेज, वेरी गुड, करेक्टर, एफर्ट, टॉलरेंस, गुड, अकाउंटेबिलिटी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोऑपरेशन। सो बहुत सारे हैं, अगर मैं लिस्ट बनानी शुरू करूंगा, आप लोग 500 लोग हैं, 500 गुण तो आप बता ही देंगे, क्योंकि हर एक में कोई ना कोई गुण तो है ही और सबके पास अपने जीवन का अनुभव भी है। अब मैं इनको थोड़ा सा कंडेंस करने की कोशिश करता हूं। आई जस्ट ड्रॉ ए सर्कल, कि हम लोग यहां शिव बाबा की बात करते हैं, ज्योति की बात करते हैं, तो सर्कल जरूर ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि बिंदु रूप है परमात्मा और बिंदु कोई सिंधु रूप में समझने की बात है सारी यहां। एंड इस सर्कल के मैं 8 टुकड़े कर रहा हूं, अष्ट शक्तियों की बात हो रही है ना, तो 8 टुकड़े कर देते हैं। एक बार दादी जानकी के पास, दादी जानकी एक राष्ट्रपति को मिलने गई। दादी जी मिले ना आपको, देखा किसी संस्था में 90 साल की बुढ़िया को चीफ बनाया जाता है? हैं जी, नहीं नहीं मैं चीफ बनाने की बात कर रहा हूं, उसको चीफ बने हो गए ना, 3-4-5 साल हो गए। 95th में चल रही हैं वो, 90 साल की एक बूढ़ी माता को चीफ बनाया गया, 60 साल का हम रिटायर कर देते हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था में सब कुछ ही विचित्र है। वो जब 60 साल का दादा लेखराज हुआ तो रिटायर होने की बजाय उसका एक नया जन्म हुआ। आपने आर्ट गैलरी में देखा हो, 55 साल का दादा लेखराज बैठा आराम से कुर्सी पर, जो मम्मा का मॉडल है ना, लास्ट में हम आते हैं, और एक छड़ी पकड़ रखी, बढ़िया जूते वूते पहन के कोट पैंट टाई लगा रखी दादा लेखराज ने, 55 साल की उम्र है वो। 60 साल का बाबा हुआ तो परमात्मा का प्रवेश हुआ, आंतरिक शक्तियां जागृत हुई और बुढ़े ने छड़ी छोड़ दी। वैसे कहते हैं 60 से लगे लठ। जब 60 साल का होता है तो उसको एक डंडा हाथ में दे देते हैं, शहर में रहने वाले को, गांव वाला तो खैर बचपन से ही रखता है। वो सुरक्षा की बात अलग है, ये तो चलने के लिए इसको डंडा चाहिए। और उस बंदे ने 60 साल की लठ सुट देती। बाबा को बैठे देखो कैसे बैठता बाबा। हम लोग बैठते हैं कुर्सी पे पीछे ऐसे सहारा लेके, आप ब्रह्मा बाबा को बैठे देखो, कुर्सी बैठा हुआ है, पीठ का सहारा नहीं कभी लेता था। सोफे पर बैठे हैं, नौजवान हैं आप, देखिए कैसे बैठे आराम से। और बाबा कैसे बैठता था, बैठ के दिखाइए। हाँ छोड़ के ये देखिए, 60 साल के बाबा ने 93 साल की उम्र तक जब भी बैठा देखा उसको, किसी ने उसको अपनी कुर्सी पर पीछे कुर्सी की बैक का सहारा लेते भी नहीं देखा, सब सहारे छोड़ दिए, एकदम सीधा बैठता था। फायदा, रीढ़ की हड्डी सदा सीधी, उम्र ऑटोमेटिकली लंबी। दैट वॉज दी सीक्रेट ऑफ हिज लाइफ। ऋषि मुनि तो हमको हमेशा सिखाते हैं, हमने बाबा रामदेव को देखी कैसे बैठता हो, सीखते तो हम देखते हम सब हैं लेकिन सीखते बहुत कम है। उसको अंतर में रियलाइजेशन हुई, उसने कहा अगर मुझे बुढ़ापे में लंबी उम्र तक काम करना है, इस विश्व के परिवर्तन करने का आधार बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। 60 साल में जब हम कर्म छोड़ने का वक्त होता है, उसने कर्मठता का संकल्प लिया और एकदम इरेक्ट बैठना शुरू किया, शूज रिमूव्ड, खड़ाव पहनता था बाबा। आपने अपने गुरुजनों को कभी कभी किसी किसी आश्रम में, आजकल तो बहुत कम रिवाज है खड़ाव का, खड़ाव पहने देखा होगा, जब चलते हैं तो क्या होता है, ठैक 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 करके चलते हैं। बाबा के पांव के चलने की आवाज किसी ने कभी नहीं सुनी। रात को 2:30 बजे उठना, 3 बजे पहले अपना 15-20 मिनट आधा घंटा योग कर लेना, और फिर सब कमरों में बाबा चक्कर लगाता था। थोड़े थोड़े बच्चे थे उन दिनों, 25-50, लेकिन सब कमरों में जाके देखता था कि कोई बच्चा कैसे सोया हुआ है। हमको रात को जब थोड़ी ठंडी लगती तो क्या करते हैं, हैं जी, अनुभवी माताएं देखती ना, बच्चे भी रोज ऐसे करते, ऐसे सिकुड़ जाता है, कंबल नहीं खींचेगा सिकुड़ जाएगा। और फिर माता जी को, अरे बेटा बेचारा सुगड़ा पड़ा है, तो कंबल डालती है ना, बाबा जाके उन पर कंबल डालता था। अगर वो ठक ठक करता हुआ जाता तो सिगड़ा हुआ बेचारा सिगड़ा थोड़ी रहता, तो खड़ा हो जाता। यानी बच्चे को कभी पता नहीं लगा कि बाबा कब आया। हाँ उसको थोड़ा थोड़ा तो नींद में होता है कि ठंडी लग रही है इसलिए मैं सिकुड़ा हुआ हूं, और एकदम देखता है थोड़ी देर बाद कि उठा मैं फ्रेश होकर, मेरे ऊपर कंबल किसने डाल दिया। यानी इतना सॉफ्टली चलता था बाबा खड़ाओं के साथ। दैट इज कॉल्ड अंतर्मुखी है, और अपने खड़ाओं की आवाज खुद सुनता था पहले, कि अगर मुझे सुनाई देगी तो उस बच्चे को तो सुनाई देनी ही, अगर सोया उठ गया तो मेरे जाने का फायदा क्या है। तो ही वॉज बेस्ट क्वालिटी ऑफ हिम वॉज लिसनिंग। ऑब्जर्वेंट थे, लिसनिंग बेसिक क्वालिटी होती है एक लीडर की, फर्स्ट क्वालिटी ऑफ ए लीडर इज ही इज अ गुड लिसनर। आप सभी इस लीडर का पार्ट अदा कर रहे हैं। एक बार एक जनरल मैनेजर के ऑफिस में एक यूनियन लीडर पहुंचा, पीए को बोलता है साहब को मिलना है, यूनियन लीडर थोड़ा जोर से तो बोलती हैं। हाथ में उसके कुछ कागज थे, पैकेट था एक, तो पीए गया अंदर। सर वो यूनियन लीडर चक्रवर्ती आया है और कहते साहब को मिलना है। कि चेहरा कैसा एकदम बढ़िया खिला हुआ। अच्छा, और हाथ में सर कोई पैकेज है कागजों का, जरूर पट्टा कोई मुसीबत लेके आया, कोई डिमांड लाया होगा। वल्लो साहब बिजी हैं। वापिस चक्रवर्ती साहब, सॉरी ही इज बिजी, ही कैन नॉट मीट यू नाउ, कैन यू कम इन द इवनिंग। ठीक। शाम को चक्रवर्ती साहब फिर आए, वही पैकेट हाथ में लिए हुए, और कैन आई गो इन। फिर पिए गया अंदर कि साहब वो फिर आ गया। अबे फिर आ गया वो, बोलो अंदर मीटिंग चल रही है। ठीक है साहब, मीटिंग चल रही है। फिर चक्रवर्ती साहब वापस। अगले दिन सुबह फिर पहुंचे, और उस दिन जीएम साहब ने कोई आउटस्टेशन ड्यूटी पर जाना था। तो पीए ने बोला, सर चक्रवर्ती साहब आए। तू समझता नहीं यार, मैंने बाहर जाना है आज, आई हैव टू डू सो मेनी थिंग्स एंड हैव टू पैक अप, आई मस्ट गो, प्लीज टेल हिम साहब बाहर जा रहे हैं। क्या वो बाहर, वो तो सुन ही रहा था बाहर से कि बोले जाके कि साहब बाहर जा रहे हैं। तो जैसे ही बाहर आया तो चक्रवर्ती साहब बाहर जा रहे थे। कि क्या हुआ सर? अरे आपके साहब ने कहा ना साहब बाहर जा रहे हैं, तो मैं भी बाहर चला जाता हूं। चले गए चक्रवर्ती जी। 15 दिन के बाद साहब वापस आए, जीएम साहब 15 दिन की आउटस्टेशन ड्यूटी करके वापस आते हैं, और उनका माथा ठनकता है। अरे वो यूनियन लीडर आया था 3 बार, मैंने भगा दिया उसको, अगर मैं उसको बुलाऊंगा नहीं तो प्रभु को भी पंगा पाऊ, उन्हें और की काम है। यूनियन लीडर है, उन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही। बुलाया जी, चक्रवर्ती साहब को बुलाया जाए। चक्रवर्ती साहब आए, पेश हुए। जीएम कहता, यस मिस्टर चक्रवर्ती, प्लीज सिट डाउन। बैठ गए चक्रवर्ती साहब। पहले कहा, नहीं नहीं सर कोई बात, बैठिए ना। बैठ गया वो। कहिए आप 15 दिन पहले आए थे, मैं बाहर जा रहा था, आई हैड नो टाइम, क्या काम था? कि सर काम तो हो गया। ये क्या हो गया? कि सर मेरी बेटी की शादी थी, मैं आपको इनविटेशन देने आया था, काश आप मुझसे मिलकर आते, मेरी बच्ची के सिर पे हाथ रखते, मैं जीवन भर आपका गुलाम रहता। न कह के वो चुप कर बाहर चला गया। क्या हाल हुआ होगा साहब का? सिर्फ इसलिए कि ही डिंट हैव ए मिनट टू लिसन, कि वो किस लिए आया है, सुनने सुनता ही नहीं था उसकी। इतना अंतर पड़ जाता है, अगर आप लिसनिंग है तो बहुत अच्छे लीडर हैं, अदरवाइज। सेकेंड वन, अवेलेबिलिटी, सिर्फ सुनना ही नहीं लेकिन मेंटली भी अवेलेबल हो, फिजिकली भी अवेलेबल हो और मेंटली भी अवेलेबल हो, तभी वो कुछ काम कर सकता है, कोई डिसीजन ले सकता है। जैसे दादी जानकी जी हमारी राष्ट्रपति के पास गई, तो उन्होंने कहा, देखो दादी आप तो सुने योग सिखाती हैं, मगर मेरी समस्याएं थोड़ी डिफरेंट टाइप की हैं। ये क्या? मुझे बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं, मेरा देश बहुत टर्बुलेंस सिचुएशन में से गुजर रहा है, लोगों में बहुत विचारों का भेद बहुत है, मगर मुझे दोनों साइडों को साथ लेके चलना पड़ता है। कोई ऐसा तरीका सिखाओ दादी कि मैं बड़े सॉलिड डिसीजन ले सकूं और लोगों को अपने साथ में लेके चल सकूं, तभी तो लीडर कहलाऊंगा। तो ऐसी कुछ बात आप सिखा सकती हैं? तो दादी कहती है, मैं इसीलिए आई हूं भाई, मैं तो आपको राजयोग सिखाती हूं, और राजयोग से 4 बातें तेरे में अपने आप धारण हो जाएंगी, तो ऐसा बन जाएगा। कि कैसा बन जाऊंगा? ये तेरे में सुनने की, समेटने की शक्ति आ जाएगी, सहने की आ जाएगी, समाने की आ जाएगी, कि ये सब बातें मैंने क्या करनी है। इसका फल वो होगा जो तू चाहता है मेरे भाई। मैं उस पर अभी आ रहा हूं, कैसे वो आती हैं। सेकेंड क्वालिटी इज अवेलेबिलिटी, माना वो समेटने की बात, और उधर संकीर्ण करने की बात में लिसनिंग आ गई। थर्ड क्वालिटी इज टॉलरेंस, आप में से भी किसी ने कहा सहनशीलता की शक्ति होनी चाहिए योगी में, अगर वो टॉलरेंट नहीं है, मान अपमान निंदा स्तुति में एक समान नहीं रह सकता है, तो भगवान ही उसका मालिक। जिसमें टॉलरेंस पावर का मतलब कोई वीकनेस नहीं होता है, लोग कुछ भी आपको कहें आप उनको डिटैच होकर के उसकी बात को सुन सकें और एक बार सह लें और उसकी बात को समाएंगे, तभी फिर वो आपकी बात सुनेगा। लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग मूड में आते हैं। एक बार तो उनकी सुनकर सहना ही पड़ता है, तभी आप उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगर आप बीच में रिएक्टिव होकर के बोल दें तो बात वहीं की वहीं बिगड़ जाती है। अडेप्टेबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी कह देते हैं। विविध प्रकार के लोगों को मिलना होता है, उनके साथ मिलकर आपने काम करना है, उनके साथ आपके विचार भेद भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आप कभी भी अच्छे लीडर नहीं बन सकते। अगर उन्हें को आपने साथ लेकर चलना है तो पहले उनके साथ एडजस्ट होना पड़ेगा। अडेप्टेबिलिटी बेस्ट क्वालिटी होती है गोल्ड में। सबसे अच्छा मेटल कौन सा होता है? क्यों महंगा होता है? इसलिए 10-12 हजार रुपये तोला, अब तो 15 हजार हो गए शायद जी। की कह रहे 20 हजार रुपये हो गया तो 20 हजार रुपये तोले राती थे, 17,000 करोड़ रुपए वाला फंक्शन देखे प्रधानमंत्री थे हमारे आए हुए, मनमोहन सिंह जी बैठे हुए थे, राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल बैठी थी, किंग चार्ल्स आया हुआ था बकिंगम पैलेस से क्वीन का मैसेज लेके। क्या चल रहा होगा? कॉमनवेल्थ गेम्स का फंक्शन। कॉमनवेल्थ गेम्स में शुरुआत हुई थी 101 साल पहले बकिंगम पैलेस से, इसलिए किंग चार्ल्स, प्रिंस चार्ल्स को बुलाया जाता, ही वॉज द चीफ गेस्ट, क्योंकि उसके यहां से शुरुआत हुई। और अब तो हम कर रहे हैं, इसलिए होस्ट हमारी राष्ट्रपति महोदया थी, तो दोनों ही मेन थे। मुख्य अतिथि प्रिंस चार्ल्स था, वो भी आया, युगल के साथ आया, और भी बहुत से लोग, बहुत से स्टेट्स के हेड आए हुए थे। एक देखने को बहुत सुंदर सीन दिखाई दे रहा था कि मनमोहन सिंह जी ने समय पर इंटरवीन करके सब तरह की, तरह तरह के लोगों की बातें चल रही थी। अडेप्टेबिलिटी अगर देखनी है तो सबसे अच्छी किसमें है? सरदार मनमोहन सिंह। वह वर्ग का कोई अडेप्टेबल बंदा नहीं मैं देखे कट्टोकट बोलेगा, सुंदर शब्द दिया। इतनी भयंकर परिस्थिति थी हमारे देश में, अरे क्या कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं, कुछ नहीं, सब खराब हो गया, इतनी बारिश आ गई, कोई चीज बनी नहीं है। 4 दिन पहले हम क्या अखबारों में पढ़ रहे थे, कल रात का फंक्शन देखते, और वो बंदा सबके साथ जाके उनका हौसला बढ़ा रहा, उनकी हिम्मत दे रहा, और करना ही है तुम्हें टाइम पर। और कल शाम को वो देखने वाला फंक्शन था, मैंने तो टीवी पर देखा 15-20 मिनट। एवरीथिंग वॉज परफेक्ट इन ऑर्डर एट द राइट प्लेस। पूरे 71 देशों के पार्टिसिपेंट्स थे, और किसी प्रकार की कोई भी खामी उस सीन में, उस दृश्य में कहीं नहीं दिखाई देती थी। सिक्योरिटी परफेक्ट, लेआउट परफेक्ट, डिजाइनिंग, सौंदर्य एक्सेप्शनली गुड। हर चीज का अपना 5 मिनट 5 मिनट सब नपे तुले बोल बोल रहे थे। कलमाड़ी जैसा आदमी जिसका बाजा बज रहा था कुछ दिन पहले, उसने बेस्ट भाषण दिया, एक एक को एड्रेस करके उसने सबका दिल जीता। सबसे अधिक अप्लॉडिंग उसके लेक्चर में हुई, क्योंकि वही सिर्फ जानता था कि कौन कौन आए हैं, कितना उनका स्ट्रेंथ है, सारे सिस्टम्स का पता था उसे। फिर उसने ये भी रेफर किया कि हम 4 दिन पहले हम सोच रहे थे ये चैलेंजिंग सिचुएशन हम कैसे मीट करेंगे, लेकिन देखिए हमारा देश ऐसा देश है जो लास्ट मोमेंट पर सब कुछ कर सकता है, और आज देखिए इस प्रोग्राम को, और सब तड़ातड़ तारियां बजा रहे थे। इसे है अडेप्टेबिलिटी की एक बड़ी क्वालिटी होती है, और जब तक अडेप्टेबिलिटी ना हो तब तक आप लोगों को साथ लेके नहीं चल सकते। गोल्ड इसलिए सबसे महंगा होता है कि उसमें मोल्डिंग एबिलिटी होती है। मैलिएबिलिटी ऑफ गोल्ड इज मैक्सिमम। अलग अलग मेटल्स में अलग अलग मैलिएबिलिटी होती है, सभी मेटल्स पूरी तरह से नहीं मोड़े जा सकते, सिर्फ गोल्ड ऐसा है जिसको जैसा चाहे वैसे मोड़ लें, इसीलिए इतने सुंदर सुंदर गहने आपको देता हो, बाकी मेटल्स नहीं दे सकते। और फिर सबसे बड़ी बात होती है कि आपको कोई बहुत बड़ा काम करना है और सहज रूप से करना है, तो मैलिएबिलिटी इज दी ओनली क्वालिटी बाय विच यू कैन डू दैट। ये 4 बातें हैं जो बनने वाली बात है, और जो योगी होता है वो ये 4 बातें योग से सहज रूप में अपने जीवन में पा लेता है। ही बिकम्स लिसनिंग टाइप होता है, अवेलेबल रहता है, टॉलरेंस होती है, अडेप्टेबिलिटी होती है। अंग्रेजी बोलूं तो, हिंदी में बोलूं तो विस्तार को संकीर्ण करना उसको आता है, समेटने की शक्ति होती है उसमें, सहने की और समाने की शक्ति होती है। और इसके फलस्वरूप ये तो बन गया ये तो वो योग से बना। और अब बात आती करने की, लीडर वो होता है जो अच्छे बोल डिसीजन लेता हो। हमारी महिला मुख्यमंत्री बनी, हमारे जनरल साहब सिक्योरिटी विंग के प्रोग्राम के लिए आते हैं, तो उन्होंने पूछा क्या भाई अशोक, वो तुम्हारी सीएम एक लेडी बनी है, कैसी है वो? तो मैंने कहा सर बहुत अच्छी है, डिसीजन लेती है, निर्णय लेंदी है कि नहीं लेंदी? कि लेंदी है जी, टाइमली ले लेंदी है, पंजाबी से क्या जनरल टाइमली लेती है, आई थिंक शी इज टेकिंग, शी विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल। मतलब बंदे की क्वालिटी एक ही है, जो भी लीडर हो अगर डिसीजन लेता है और टाइम पर ले लेता है, सिचुएशन को परख लेता है, माना उसने कामयाब होना ही है। उस राष्ट्रपति की यही रिक्वायरमेंट थी। तो लिसनिंग सिखाने से आप में डिसर्नमेंट आ जाती है, जिसे हम डिस्क्रिमिनेशन भी कह देते हैं। इफ योर पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज गुड, योर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज नाइस, यू आर एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन गुड एंड बैड, यू कैन सिंथेसाइज द होल सिचुएशन, यू कैन प्रायोरिटाइज कि क्या आपको पहले करना है क्या पीछे करना है। देखना तो हमें निर्णय लेने की बात है, लेकिन ये जैसे कहा ना, एक तपस्वी था और एक आईएएस। अब मैं उन दोनों की बातें कह रहा हूं। तपस्वी वो जो हर चीज को असेस कर सकता हो, सिंथेसाइज कर सकता हो, प्रायोरिटाइज कर सकता हो। डिसीजन लेने का ये प्रोसेस होता है कि आप प्रायोरिटी बना लीजिए और एक वो सिचुएशन उनमें से चुन लीजिए जो आपने कर्म में लानी है, दैट इज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो अगर आप लिसनिंग टाइप हैं तो आपकी डिस्क्रिमिनेशन पावर आ जाती है, और आप अवेलेबल हैं तभी आप डिसीजन ले सकते हैं। डिसीजन मेकिंग, अगर आपने ये प्रायोरिटीज कर ली तभी आप एक निर्णय को एक्शन में ले आएंगे, प्रायोरिटी को डिसाइड करें कि मुझे ये करना है। करने के बाद रेस्पॉन्सिबिलिटी, हम बहुत से निर्णय ले लेते हैं लेकिन अगर कोई गड़बड़ हो जाए, तुमने ऐसा किया ना इसलिए ऐसा हो गया, दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। अच्छा लीडर वो है जो अपने निर्णय की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए सदा तैयार रहे, अच्छा या बुरा जो भी फल है उसका है। मिलिट्री में लीडरशिप अच्छी क्यों कहलाती है? मैंने जिस दिन एयरफोर्स ज्वाइन की, मैंने पहले दिन ही देखा कोई सिस्टम चल रहा था और एक महीने के अंदर कोई बहुत बड़ा फंक्शन था 26 जनवरी का, उसकी एक ट्रायल में एक चीज फेल हो गई, एक जगह जनरेटर नहीं चला और ट्रांसमिशन नहीं हुई। और हमारे साहब को जो इंचार्ज थे पूछा गया, ही सेज यस आई हैव लैक्ड इन गिविंग प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस। इंक्वायरी जैसे ही आई तो हमारा साहब कहता है कि मैंने प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देने में गलती की है, मेरी भूल है, और उसको एक रेप्रिमांड दे दिया गया। 26 जनवरी की परेड सब ठीक हुई, लेकिन एक दिन पहले प्रैक्टिस में एक सिस्टम नहीं चला। उसने ये नहीं कहा कि उस सार्जेंट ने ठीक तरह से वहां काम नहीं किया इसलिए नहीं चला। आई लैक इन गिविंग इंस्ट्रक्शंस। मैंने कहा सर आप क्या कर रहे हो? कहता है अफसर हूं भाई, और क्या करूंगा, बच्चे से गलती होगी तो क्या हुआ, लूंगा तो मैं अपने सिर पे। मैंने कहा आप रेप्रिमांड ले रहे हैं, गलती तो सार्जेंट ने की है। बिल्कुल नहीं, आई ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माय डिसीजंस, आई हैव नॉट बीन एबल टू कन्वे इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली, सो ही मिस्ड वन, इट इज नॉट हिज फॉल्ट। और जब सब कुछ अच्छा हो गया तो उसको एक कमेंडेशन आ गई कि बहुत बढ़िया आपने सारा अरेंजमेंट किया, फ्लाई पास बहुत अच्छा हुआ। तो चीफ की कमेंडेशन आई, मैंने देखा उसको वैसे ही आराम से बैठा हुआ है। मैंने कहा सर आप खुश नहीं हो रहे? अरे कमेंडेशन आई है। कहता है मेरा नाम शर्मा है, मेरा नाम स्कॉर्डिनेटर शर्मा है, मैं ब्राह्मण आदमी हूं, गीता पढ़ता हूं भाई, मान अपमान सुख दुखेशु। अपमान आया था तब भी कुछ नहीं हुआ, अब मान आ गया तब भी कुछ नहीं होगा। दैट इज द टाइप ऑफ पीपल वी हैव गॉट इन सर्विस। इसलिए मिलिट्री को अच्छी सर्विस कहा जाता है। और हम ऐसे भाग्यशाली थे कि ऐसा बॉस मिला, थे दोनों बातें उससे सीख ली और वो आज तक काम आती रहती है। अध्यात्म के जीवन में भी अगर कोई संस्था प्रगति नहीं कर रही है तो लीडर कहता है मेरी गलती है। हमारी दादी जी थी, अगर किसी प्रकार कोई खामी हो तो दादी अपोलोजाइज करेगी, खामी तो किसी वर्कर से ही होती है, लेकिन उसने कभी किसी वर्कर को कभी नहीं जिम्मेवारी दी, मेरी भूल है, मैं क्षमा चाहती हूं, बड़ा बोल्डली बोल देती थी। आपको मालूम है एक लाल बहादुर शास्त्री जी करके रेलवे मिनिस्टर होते थे कभी, याद है? द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर प्रोड्यूस इन इंडिया वॉज दैट 1.5 feet टॉल मैन। उसकी क्या विशेषता थी? रेलवे में एक एक्सीडेंट हुआ, आज हमारे लल्लू जी आए या ममता बनर्जी आई, हर रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, एक इंक्वायरी बिठा दी है, हो गया काम। और हम क्या कर सकते हैं? लालू यादव जी तो यही कहेंगे, और उस बंदे ने एक्सीडेंट हुआ है, आई एम रिस्पॉन्सिबल, ही रिजाइन, और वो बने मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो। पंडित जी की देखिए विशेषता, उन्होंने उसको रिजिग्नेशन एक्सेप्ट करते हुए कहा, ओके आई डोंट एक्सेप्ट योर रिजिग्नेशन फुल्ली, यू आर मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो, मैं आपको कोई अच्छा पोर्टफोलियो दूंगा। और अचानक प्रधानमंत्री जी चले गए ऊपर। कौन बना प्रधानमंत्री? त्याग से भाग्य सदा ही बनता है, त्याग करने की सदा तत्पर रहे, भाग्य बनना ही है, जिम्मेवारी लीजिए और आप सदा राइज ही करेंगे लाइफ में। ए गुड लीडर इज द वन हु टेक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एक्शंस परफॉर्म्ड बाय हिज डिसीजंस। लास्ट होती है कोऑपरेशन। असली लीडर तो वही है जो टीम स्पिरिट को बनाए रख सके, अच्छे डिसीजन लेता हो और टीम स्पिरिट बना सकता हो, उसे कहते हैं अच्छा लीडर। अगर आपके अंदर अडेप्टेबिलिटी है तभी आप अच्छी टीम वर्क बना सकते हैं। एक तिनके को देखिए, नदी के रास्ते में कोई ऐसे तिनका खड़ा हुआ हो, क्या होता है जब बाढ़ आती है तो वो झुक जाता है, और जैसे पानी बह जाता है वो आराम से खड़ा हो जाता है। समय आने पर झुक जाना, यानी जैसी परिस्थिति जैसे लोग, उनके सामने नम्रता का व्यवहार कर लेने से वो लोग हमेशा आपके साथ रहते हैं। और बहुत बड़े बड़े काम, बड़े भयंकर काम भी बड़ी सहजता से आप कर सकते हैं। ये सभी आठों लीडरशिप क्वालिटीज, लिसनिंग, अवेलेबिलिटी, टॉलरेंस, अडेप्टेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन, डिसीजन मेकिंग, रेस्पॉन्सिबिलिटी और टीम स्पिरिट, जो आठों गुणों से सजा हुआ हो वही अच्छा लीडर होता है। इन्हीं को आप हिंदी में इधर देख लीजिए तो आपको अष्ट शक्तियों के रूप में दिखाई देंगी। सेम कोऑपरेशन, तो कोऑपरेशन टीम स्पिरिट पर हमने खत्म किया, टीम स्पिरिट पर शक्तियां खत्म हुई। लिसनिंग से हमने शुरू किया कछुए से, तो कछुआ ऑब्जर्व करता और सुनता रहता है, इसीलिए खाने की वस्तु गिरते ही फट गिरता है और वापस आके बैठ जाता है। 10 मिनट और ले सकते हैं टाइम? मैं आपको दादी प्रकाशमणि जी की, जो हमारी चीफ रही हैं, जिनके समय में ये ज्ञान सरोवर बना, जिनके समय में हमारे करीब 40-50 सेंटर 8,000 सेंटरों में चेंज हुए, हमारे 1,500-2,000 स्टूडेंट 8,00,000 स्टूडेंट्स में उनकी एक्सपेंशन हुई, उनकी क्वालिटीज की बात सुनाकर मैं इस बात को पूरा करूंगा। ज्ञान सरोवर आपको कैसा लगता है? एक शब्द में कोई बोले, सर का मॉडल कह दीजिए। चलो सर कह दिया, मैं तो सर को नहीं कहता हूं अभी, अभी सर तो आना है असली, अभी तो एक मॉडल छोटा सा बनाया गया है, और ये भी विनाश होगा, फिर सचमुच स्वर्ग आएगा तो सारे भारतवर्ष में आएगा। लेकिन मॉडल तो जरूर तैयार है आपके सामने, ये मॉडल कैसे बना उसकी कथा मैं आपको सुनाता हूं। आपने इस ज्ञान सरोवर में प्रवेश किया, इस हॉल में जब आप एंटर करते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो अगर नहीं देखा हो तो आज जाके देखिए, राइट साइड में दीवार के अंदर एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है दी फाउंडेशन स्टोन ऑफ दिस ज्ञान सरोवर विद्यापीठ, उस समय विद्यापीठ हम इसे कहते थे, वॉज लेड ऑन 27th of March 1993 बाई हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी, द गवर्नर ऑफ राजस्थान। बाबरी मस्जिद का केस पूरा हुआ था 6 दिसंबर 1992 को, अब तो सिमट ही गया, जज साहब ने बहुत अच्छा, तीन जजों ने मिलकर बड़ा अच्छा निर्णय ले लिया है, लेकिन उस समय तो मस्जिद तोड़ी गई थी, इसलिए उसका हर्जाना दिया चार बीजेपी गवर्नमेंट्स ने, और उसमें राजस्थान सरकार भी थी, हमारे पूर्व राष्ट्रपति इस समय हमारे मुख्यमंत्री होते थे, उनको भी हटाया गया और डॉक्टर चन्ना रेड्डी साहब को फुल पावर मिल गई। मार्च में जब आए तो ही वॉज ऑल एंड ऑल, वही हमारे सब कुछ करता धरता थे राजस्थान के, उनको बुलाया गया और फाउंडेशन स्टोन लगाया गया। और फाउंडेशन स्टोन में चन्ना रेड्डी साहब की बैकग्राउंड क्या थी, दो बार तीन बार अपनी स्टेट के चीफ मिनिस्टर, पहला आदमी जो गवर्नर से चीफ मिनिस्टर बना वापस जाके, फिर वापस गवर्नर बन गया और फिर कैबिनेट मिनिस्टर और फिर गवर्नर, मगर उसका फुल पावर का, चीफ मिनिस्टर की पावर का बहुत चाव था। मैंने पहली बार देखा एक गवर्नर को सेक्रेटरिएट में गए, पहले तो हम राजभवन गए कि गवर्नर साहब तो सेक्रेटरिएट गए हैं, मैंने कहा शायद विजिट के लिए गए होंगे, वहां पीछे पहुंचे तो जाके देखा वहां मुख्यमंत्री का बोर्ड हटा हुआ था और एम चन्ना रेड्डी का बोर्ड लगा हुआ था और गवर्नर साहब सीएम की कुर्सी पर बैठे हुए थे, इतना चाव था उसको गद्दी का। हर एक को अपना अपना चाव होता है, भला आदमी था, पहले तो इतना भला नहीं था जब आया, लेकिन फिर योग सीख करके बहुत भला हो गया वो। लेकिन जब हमारे पास आया तो उसने राजयोग करना सिर्फ शुरू ही किया था और इस संस्था के प्रति उसको एक स्नेह था, दादी के प्रति बहुत आस्था थी, बहनों को बहुत रिगार्ड था उसे। तो दादी जी ने बुलाया और आ गए, फाउंडेशन स्टोन लगाया, और जैसे पॉलिटिकल लीडर का शौक होता है, गवर्नर को तो नहीं होता लेकिन चूंकि वो सीएम की कुर्सी पर जाकर बैठता था तो वैसे ही उसके संस्कार इमर्ज हो रहे थे और बोलता है कि मैं इस ज्ञान सरोवर का फाउंडेशन स्टोन लगाते हुए राजस्थान सरकार की ओर से 5 लाख रुपए का डोनेशन डिक्लेयर करता हूं। बड़े चाव से उन्होंने बोला, तालियां वालियां पिटी, दादी ने ताली नहीं बजाई, हमने नहीं बजाई, रवैर जी ने नहीं बजाई, क्योंकि हम डोनेशन लेते नहीं। हम लोग कभी किसी ब्रह्मा कुमारी को आपने बाजार में कहीं एक स्लिप लेके घूमते देखा, अरे भाई इतना बड़ा प्रोग्राम होने वाला है थोड़ा थोड़ा सहयोग चाहिए, कभी नहीं। हमारे जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं या जो हमारे सहयोगी हैं जो रेगुलर क्लासेस में आते हैं, कभी कभी आते हैं या रोज आते हैं, यानी जिनका जीवन पहले परिवर्तन हो तब डोनेशन कर सकते हैं। पहले सेवा करते हैं हम, पीछे लेते हैं, नहीं तो नहीं लेते। मैं भी आया संस्था में 3 महीने क्लास करता रहा, किसी ने मुझसे कुछ नहीं मांगा, मैंने कहा दीदी ये आपकी संस्था कैसे चलती है, कि मेरे 60 भाई हैं ना, सब मिलकर के हम चलाते हैं थ्रू द वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन ऑफ रेगुलर मेंबर्स। ऐसे दीदी आपने मेरे से तो मांगा ही नहीं, कि भाई अगर मैं तेरे से मांगूंगी तो फिर वॉलंटरी डोनेशन हुई क्या। मैंने कहा दीदी मुझे 3 महीने हो गए यहां आते हुए, मेरी बहुत सी वेस्ट हैबिट छूट गई है, मैं 1/3 ऑफ सैलरी वेस्ट करता था, मेरी बचनी शुरू हो गई है, आप भूलिए ना कितना पैसा देना है। कि फिर वही बात मेरे भाई, जब मैंने कहा ना वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, फिर मैं कैसे बताऊं कितना देना है। मैंने कहा देखो दीदी आप बहुत बड़ी हो, मैं तो छोटा यंगस्टर हूं, उस समय पालेटा सर मूछों वाला एसोसिएट जैसा लगता था मैं, तो बहुत फटाफट बोलता था। मैंने कहा दीदी फिर भी कुछ तो गाइडलाइन चाहिए ना। अच्छा तेरे जितने पैसे बचे हो मेरे भाई, आधा अपनी पत्नी को दे देना, आधा दीदी के पास, एक डोनेशन बॉक्स है, दीदी नहीं लेती है, हमारे यहां बहने पैसे नहीं लेती, वो डोनेशन बॉक्स लगा हुआ बाबा का, बाबा के यज्ञ में तुम डाल सकते हो। यानी पहले मेरा जीवन बने या मैंने कोर्स किया और मैंने सेवा की हो, जैसे आपने अभी कोर्स कर लिया है, अगर अब आपके मन में प्रेरणा जागृत होती है तो आप कर सकते हैं, लेकिन जब पहले दिन आप आए थे बिरला टाटा भी यहां आ जाते हैं, वो कहें ना मैं 1 करोड़ रुपए देना चाहता हूं, तो हम नमस्ते कर देते हैं, भाई साहब 1 करोड़ रुपए की बजाय कि आप 1 घंटा रोज हमें आप दे सकते हैं, पहले आप हमारा 7 दिन का कोर्स कर लीजिए, फिर भले जो आपकी इच्छा हो, पहले नहीं। वैसे भी वो 1 करोड़ या 5 करोड़ देगा तो 10 करोड़ की रसीद मांगेगा। और हमारा तो 1 नंबर का 3 नंबर कर दिया उसने, 2 को छोड़िए। तो क्या फलीभूत होगा और क्या हम ज्ञान सरोवर बनाएंगे। तो बूंद बूंद करके तालाब भरता है। तो फिर भी अब उसने डोनेशन डिक्लेयर की और ही वॉज वेरी टफ, आईएएस अफसरों पर बहुत टफ था वो। अगले दिन बुलाया गया हमें शाम को, गवर्नर हाउस से बुलावा आया, मैं पहुंचा, कहता अशोक भाई, उसका सेक्रेटरी कहता है कि अशोक भाई आई एम इन अ थिक सूप, सुबह से 3 बार मुझे गवर्नर ने बुलाया है और 3 बार झाड़ के बोलता हैव यू इश्यूड द चेक, आई डिक्लेयर्ड हैव यू इश्यूड द चेक। तो मैंने कहा फिर कि मैं चेक किसके नाम बनाऊं मेरे भाई, ये मुझे बड़ी मुसीबत है, आप लोग एप्लीकेशन तो दीजिए, कहिए तो सही कि गवर्नर साहब ने डिक्लेयर किया और हमें चेक किस नाम से दे दो। तो मैंने कहा सर हमको लेते ही नहीं है, इसलिए कल आपने देखा ना दादी भी ताली नहीं बजा रही थी, मैं भी नहीं बजा रहा था, निर्भैर भाई भी नहीं बजा रहे थे। मैं नोट तो कर रहा था, तुम लोग ऐसे बैठे हुए थे, तुम्हारे चेहरे पर कोई रौनक ही नहीं थी जब उन्होंने 5 लाख रुपए डिक्लेयर किया, वरना लोग एकदम ऐसे खिल जाते हैं। मैंने कहा नियम है हमारा, हम नहीं लेते हैं। या तो आपका नियम कुछ भी हो, अगर कल आपने मुझे एप्लीकेशन नहीं दी तो कल शाम को मेरी नौकरी बर्खास्त, मेरे पे रहम करो और दादी जी को बोलो भाई कि अपना नियम बदली करे या कुछ भी करे, मेरी जान बचनी चाहिए। सही केम दादी से बात हुई, निवैर भाई बैठे हुए थे, नॉर्मली सब केसेस निवैर भाई हैंडल कर लेते हैं और खालसा बहुत दलेर है, लेकिन स्टेट हेड की बात थी, स्टेट हेड ने पब्लिक में डिक्लेयर किया, उसको रिफ्यूज करना इट हैड इट्स ओन रिपरकशंस। निवैर भाई बोले देखो अशोक भाई, अगर और कोई आदमी होता ना तो मैं उसको हैंडल कर लेता, मगर ये हमारे स्टेट हेड का सवाल है, इस समय वही गवर्नर है, मुख्यमंत्री को है नहीं, सब पूरी पावर राष्ट्रपति का शासन है, इफ आई रिफ्यूज हिम इट कैन बी वेरी डेंजरस। अब बस यही हाल सुन रहे हो, इसलिए ये मामला तो हम दादी जी को ही देंगे। अब देखिए क्वालिटीज कैसे शुरू होती है, पहले तो दादी जी को सुनने का समय होना चाहिए, शी इज ऑलवेज अवेलेबल टू लिसन। अपने ऑफिस में बैठी थी, हम दोनों भाई गए, दादी ऐसा ऐसा है, वो बसीन गवर्नर बेचारा सेक्रेटरी गवर्नर का चिल्ला रहा है कि एप्लीकेशन लाओ। अरे भाई तूने उसको बताना था ना कि हम नहीं लेते हैं डोनेशन, कि दादी उसको बताया, मगर वो बेचारा डर रहा है, उसकी नौकरी का सवाल है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो दादी असेस द होल सिचुएशन, बड़े आराम से सुना, और गवर्नर का भयंकर कमेंट है कि इसको नौकरी से निकाल देंगे, सह गई आराम से। किस तरह का व्यक्ति है उसके हिसाब से मानस को उन्होंने सेट कर लिया। अच्छा अशोक भाई ऐसा करो, जाके गवर्नर साहब के सेक्रेटरी को बोलो कि दादी ने 30 मार्च को शाम को, यानी परसों शाम को, पीस पार्क में गवर्नर साहब को बुलाया चाय के लिए, और उसको बताना आप चिंता नहीं करना, दादी सब ठीक कर लेगी, बाबा बैठा ना मेरा, मैं अपने गवर्नर भाई को समझा लूंगी। तो जाके हमने कहा वसीम साहब को, तो कहता पंजाबी था वसीम, कहता वो तेरी दादी तो परसों समझाएगी, मेरी नौकरी तो कल ही चले जानी। तो मैं क्या फिर की करिए, मैं नहीं जाके कह सकता हूं सर यू हैव बीन इनवाइटेड फॉर ए कप ऑफ टी, मैं नहीं बोलने वाला भाई, मैं तो अंदर घुसा और उसने एकदम शुरू हो जाना। तो मैंने कहा फिर आप ब्रह्मा कुमार हो ना, आप भी चले जाओ अंदर। तो मैंने कहा हम तो मुस्कुराते हुए चले जाएंगे, चिल्लाएगा आप सुन लेंगे। तो गए प्यार से अंदर मुस्कुराते हुए, और गवर्नर साहब को बहुत प्यार था हमसे, इसलिए कि एयरफोर्स में थे, तो ही सीज टू से कि यू आर माई रैप इन दी ब्रह्मा कुमारी, ऐसे करके वो ऑन करता था। लीडरों में विशेषता होती है अपना बनाने की, हाँ हाँ अशोक भाई कम ऑन, यस यस वेलकम, बोलो क्या काम है। कि सर दादी जी हैज कॉर्डली इन्वाइटेड यू फॉर ए कप ऑफ टी इन पीस पार्क टुमारो इवनिंग, कल 30 तारीख है सर। अच्छा दादी ने बुलाया है, यस आई विल डेफिनेटली कम। और गवर्नर साहब पीस पार्क में पहुंचते हैं, लेकिन जाने से पहले पूरी तैयारी करके, उन्होंने समय लिया था कि मैं बुलाया, बहुत पारखी था वो, ऐसे देखता है मुझे और मुस्कुराता है, मैंने भी मुस्कुरा दिया, दोनों एक दूसरे की बात समझ गए। उसने अपने आईजी को बुलाया, आईजी इंटेलिजेंस को, गो एंड चेक व्हाट इज द बैंक स्टेटस ऑफ द ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने खबर लाके दी कि 35 लाख रुपए साहब इनके बैंक अकाउंट में, 93 30 मार्च की बात हो रही। वैसे भी हम लोग बहुत पैसा कभी अकमुलेट नहीं करते, आवश्यकता अनुसार आता जाता है और यज्ञ में सफल होता जाता है। अब दादी पहुंची पीस पार्क में, गवर्नर साहब की फ्लीट आई, बड़े प्यार से बैठाए। हमारी ये जो अप्रोच रोड है, ये हमारे पास अप्रोच रोड नहीं थी जब ये प्लॉट हमने लिया था, ये कच्चा ट्रैक होता था गांव के लिए। तो गवर्नर साहब ने गांव वालों को बुला के, ही हैड ऑल दोज पॉलिटिकल वेज ऑफ डूइंग इट, गांव वालों को कहता अशोक भाई, मैंने कहा सर अप्रोच रोड नहीं है, यस यस आई विल फाइंड ए सोल्यूशन, मैं जब फाउंडेशन स्टोन लगाने आऊंगा ना तो तुम गांव वालों को पगड़ी वालों को 5-7 को बुला के ले आना। तो हम गए सारे गांव वालों का भी, गवर्नर साहब आ रहे, सब भागे भागे आए, आपको अपने गांव के लिए सड़क चाहिए, हाँ हजूर मालिक गांव के लिए सड़क मिल जाए तो और चाहिए क्या, कि आ जाओ सब जने, और गवर्नर साहब आएंगे ना उनको एक एप्लीकेशन दे देना। हमने एक एप्लीकेशन लिख दी, उन्होंने सबने साइन कर दिए और आए वो। उसने खुद ही बताया, गवर्नर साहब ने बताया कि देख एक एप्लीकेशन लिख लेना कि गांव के लिए सड़क चाहिए, सब गांव वालों के दस्तखत करा लेने का, और उस समय मेरे पास आके मुझे वो दे दें। तो आए राजपूतों में बड़ी विनम्रता होती है, उन्होंने अपनी पगड़ी नीचे रख दी। हजूर मालिक आप यहां आए हो, गांव में हम सालगांव में रहते हैं, तो सर हमारे गांव के लिए एक सड़क की जरूरत है। हाँ अर्जी लाओ भाई अर्जी लाओ। तो अर्जी दे दी उनको, सड़क सेंक्शन हो गई। तो दादी जैसे ही बैठती हैं, गवर्नर साहब आके बैठते हैं दादी के लिए, देखो गवर्नर भाई तुम कितने अच्छे हो, तुमको देख के मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है। अब गवर्नर साहब अंदर से बुनबुनाए हुए आए, किसने मेरे 5 लाख रुपए मना कैसे कर दिए। और दादी बड़े प्यार से मुस्कुरा रही, कि क्या ऐसी बात मैंने कर दी है, देखो ना आपने गांव वालों का उद्धार किया, हमारी संस्था को रोड मिल गई, आप आए हो साथ में कलेक्टर को लाए हो, कमिश्नर को लाए हो, अपने एसपी को लाए हो, ये सब भाइयों की सेवा हो जाती है ना जब आप आते हो, सारे जने आते हैं। उसने खास एसपी कलेक्टर कमिश्नर को बुलाया था ये देखने के लिए कि देखें आज दादी मेरे क्वेश्चन को कैसे फेस करती है। और उसने कभी कॉलेज नहीं देखा, ही सेज नाउ टुडे वी विल सी व्हाट इज लीडरशिप ऑफ ब्रह्मा कुमारीज। चेक करने आया था वो खास। खैर थोड़ी देर बाद जब दादी मुस्कुरा रही थी तो उसका भी चेहरा थोड़ा ठीक होना शुरू हो गया, वो भी मुस्कुराने लगा। फिर कहता देखो दादी आज तो मैं गवर्नर बन के आपसे कुछ सवाल पूछने आया हूं, चाय तो थोड़ा बाद में पीऊंगा मैं आज। वैसे भी चाय में पीता नहीं, मैं कॉफी पीता हूं। मतलब उसने इशारा भी दे दिया मेरे लिए कॉफी बनवा के रखना। तो हमने फटाफट जाके इशारा कर दिया तो कॉफी बननी शुरू हो गई, डायलॉग शुरू होता है। देखो मेरे मीठे भाई तुम आते हो, दादी बहुत खुश होती, इतनी सरों की सेवा थी। हाँ दादी ये तो आएंगी ना मेरे साथ जब मैं आता हूं, मगर आज मैं थोड़ा इनको खास एक मकसद के लिए लेके आया हूं और मैं आपसे कुछ सवाल पूछने वाला हूं एज ए गवर्नर। पूछो पूछो गवर्नर भाई, आप तो गवर्नर हो ना, पूछ। दादी आपने मुझसे 3 दिन पहले यहां फाउंडेशन स्टोन लगवाया, इस प्लॉट में धरती पूजन कराया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको पता है कि ये जिस इतने बड़े प्लान पर आपने मेरे सिग्नेचर कराए हैं, इस इतने बड़े कॉम्प्लेक्स को समझ दीजिए, और ब्लैक शीट रॉक्स यहां कुछ भी नहीं था, केवल काली पहाड़ियां थी और झाड़ियां थी जंगली, उनको हमने साफ किया था बस। तो आपको पता है ये प्रोजेक्ट में ज्ञान सरोवर बनाने में कितना खर्चा होगा टोटल? हाँ मेरे भाई, मैंने भाई बहनों की मीटिंग की थी, उन्होंने कहा दादी कम से कम 10 करोड़ रुपया खर्च होगा। कलेक्टर नोट डाउन, शी नोज द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। इंग्लिश में आदेश देता था लिखो इसको कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट पता है, ये कभी कॉलेज में नहीं गई, ध्यान रखना इसको पर्ट चार्ट वगैरह कुछ पता नहीं क्या होता है। मैं सवाल पूछूंगा, दादी कितने समय में आप ज्ञान सरोवर बनाएंगी? हमने सोचा 2.5-3 साल में, कोशिश करके अपन 2.5 साल में इसको पूरा कर लेंगे। नो डाउन, इट इज ए टाइम बाउंड प्रोजेक्ट, टाइम बाउंड है 2.5 साल में। अभी भी आपको किसी को ज्ञान सरोवर बनाना हो गवर्नमेंट एजेंसी से, भले कॉमनवेल्थ गेम्स वाले ही आ जाए बनाने के लिए, वो 10 साल से कम नहीं लगाएंगे। और खर्चा 100 करोड़ से कम नहीं करेंगे। खैर देन ही सेज, अच्छा दादी अब मैं ना एक थोड़ा कठिन सवाल पूछने वाला हूं। हाँ पूछो पूछो मेरे भाई पूछो। मैंने थोड़ा वो इंटेलिजेंस की रोज रिपोर्ट लेता हूं, मैंने चेक किया कि आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ 35 लाख रुपया है और 10 करोड़ का प्रोजेक्ट की आपने मुझसे भूमि पूजन भी करवा लिया। अब आप ये बताइए कि ये 10 करोड़ रुपया कहां से आएगा? विदेश वाले देंगे आपको कि नहीं 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 नहीं, मेरे बाबा ने मुझे एक बहुत अच्छी बात सिखाई है, अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है। फिर ऊपर से शिव बाबा गिराएगा नोट, कि वो कैसे गिरा सकता है, वो बिंदु रूप परम धाम में बैठा, वो धन धन भोलेनाथ आपके कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोग बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में, वो कहां से पैसा गिराएगा भाई? तो फिर आप करेंगी क्या? और भी कोई सवाल हो तो गवर्नर भाई पहले पूछ लो। अच्छा पहले एक और बताइए दादी कि रोज का खर्चा कितना होगा? आपने 2.5 साल तो कह दिया, कि वो भी मैंने भाई बहनों को पूछा, वो कहते हैं 1.5 लाख रुपया रोज चाहिए दादी। कलेक्टर नोट डाउन, शी नोज एवरी डेज एक्सपेंडिचर ऑल्सो एंड द पुअर लेडी हैज नो मनी, इसके पास पैसा तो है ही नहीं, एंड शी हैज डिनाइड माई डोनेशन। उसके कान में कहता कि मेरी डोनेशन इसने मना की है, अब मैं पूछता हूं कैसे करेगी। तो फिर अच्छा दादी तो फिर ये बनेगा कैसे? विदेश से नहीं आएगा, ऊपर से नहीं गिरेगा, जमीन में गड़ा हुआ है नहीं, आप शुरू कैसे करेंगी? और मैं एक बात आपको बता दूं दादी, जब तक 10% पैसा ना हो हाथ में, मैंने बहुत प्रोजेक्ट चलाए, अगर 10% से कम पैसा हाथ में हो और आप एक कोई प्रोजेक्ट शुरू कर दें जो डोनेशन पे चलने वाला है, वो कभी खड़ा होने वाला नहीं, ये आप पक्का समझ लीजिए। तो दादी मुस्कुराती रही। और भी कोई सवाल पूछना है, कोई राय देनी हो तो पहले दे लो, फिर दादी बोलेगी। पर ध्यान रखना तुम मेरे भाई हो। नहीं नहीं मैं आपका भाई नहीं, मैं तो आपका स्टूडेंट भी हूं दादी। मैं थोड़ा ना अब ऐसे जवाब दूंगी जो तुझे थोड़ा सहना पड़ेगा। हाँ दादी मैं सब सह लूंगा, मुझे कोई फील नहीं होगा, आप बताइए। दादी ने कल भूमि पूजन करवा के 5 धातुएं दादी ने तुमको दी थी। दादी ऐसे नहीं थी मैंने दी थी, ये तो दादी का बात करने का लहजा। दादी ने आपको 5 धातुएं दी, आपने पूजन किया, आप लेके नहीं आए थे राजभवन से। तो भाई तूने राजभवन तुमने दादी से पूजन करवा के कोई दादी को खरीद नहीं लिया, ये ध्यान रखना। कि नहीं दादी मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकता, अब खरीदने क्या बात है इसमें। मगर मेरी तो एक बड़ी भयंकर समस्या ये है कि आपके पास पैसा नहीं है, आप बनाएंगी कैसे। अरे भाई तू शांति से सुन तो सही। कि दादी ने एक मीटिंग बुलाकर सबसे विचार विनिमय किया है और एक हमने फार्मूला निकाला है कि ईच वन, दादी ने कहा अंग्रेजी ठीक समझता है थोड़ी अंग्रेजी बोल दें, ईच वन ईच डे ईच रूपी कम से कम मेरे भाई बहन देंगे। अच्छा तो एक एक आदमी एक एक रुपया देगा कि जी। तो कितने विद्यार्थी हैं आपके? कि 3 लाख स्टूडेंट हैं मेरे। कितने पैसे लोग डालेंगे, कितने लोग उसमें से रोज पैसा डालेंगे और कैसे डालेंगे? ये थोड़ा शांति से सहायता से सुनता जाना भाई, मैं सब सवालों का जवाब देने वाली हूं। मैं समझती हूं करीब 60-65% लोग जरूर पैसा डालेंगे, 30-40% मैं छोड़ देती हूं, बच्चे हैं बूढ़े हैं गरीब हैं नहीं डाल सकते रोज। तो फिर रोज का कितना हो गया? वो तो एकदम उतावला था कि वो बैठा ना भाई आपका कलेक्टर हमारा, उसके हाथ में कैलकुलेटर है, उसको पूछो कि कितना हो जाएगा। तो कलेक्टर साहब कहते हैं सर 1,60,000 रुपीज पर डे, तो 1.5 लाख हो गया ना। फिर मगर आपके पास तो है ही नहीं, वो कहां से गया? अरे भाई तू शांति से सुन तो सही, मैंने कहा ना कि तुमने भूमि पूजन करके 5 धातुएं डाल के दादी को खरीद नहीं लिया। दादी 3 महीने कुछ नहीं करने वाली, कैसे देखता हूं कुछ नहीं करने वाली। ये शुरू कैसे होगा? फिर वही थोड़ा शांति से सुन, धीरे रख मेरे भाई तू, धीरे रख, तू मेरा विद्यार्थी है ना ब्रह्मा कुमार, बड़े धीरजवान होते हैं। जी दादी मैं सुनता हूं। कि दादी ने कहा है एक एक डोनेशन बॉक्स अभी सेंटर में लगेगा, क्योंकि वैसे भी डोनेशन बॉक्स सेंटर में होता है, उससे हम ज्ञान सरोवर लिखेंगे। 1 महीना तो डोनेशन बॉक्स रखने में ही लग जाएगा लोगों को, फिर लोग पैसा डालेंगे, फिर 2 महीने में समझिए 1 महीने का पैसा इकट्ठा होगा, फिर वो आएगा मेरे पास। तो 2 महीने तो इसमें ही लग जाएंगे कि पहले महीने का पैसा आए, फिर दादी देखेंगी कितना आया कि कितना आ जाएगा। तो बैठा ना भाई कैलकुलेटर लेके, उसको पूछो कलेक्टर को कि कितना आएगा। सर एज पर 1,60,000 रुपीज इट विल बी मोर देन 50 लाख सर। अच्छा तो 50 लाख आएगा। फिर दादी आपने तीसरा महीना क्यों मांगा? एक बार किसी ने डाला, दूसरी बार नहीं डाला तो दादी 1 महीना और इंतजार करेगी, ताकि पक्का रहे कि लोगों ने डालने की आदत बना ली है। और 3 महीने बाद कितने पैसे हो जाएंगे दादी के पास? तो ही सेज हाँ बताओ ना, उसको पूछो भाई को, वो कैलकुलेटर लेके बैठा है। तो कहता सर 50 लाख 50 लाख 1 करोड़ 35 लाख 1 करोड़ 35 लाख। तो तेरा 10% हो गया ना मेरे गवर्नर भाई, तब दादी शुरू करेंगी। कि दादी हैव यू नोटेड दिस लेडी डजंट हैव मनी, शी हैज ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ फंड्स, शी इज इंश्योरिंग दैट मनी हैज रीच एंड मनी इज इन पाइपलाइन ऑल्सो। सिर्फ इतना इंश्योर नहीं किया कि एक बार आया पाइपलाइन में आता जा रहा है, पक्का करके ये शुरू करने वाली है। इसका प्रोजेक्ट को रोक सकता है क्या? इट हैज टू कम अप इन 2 ईयर्स इंस्टेड ऑफ 2 ईयर्स एंड 5 मंथ्स। सचमुच 2 साल के बाद 95 की 18 जनवरी को इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। अभी ताली बजाने वाली बात पूरी नहीं आई, अभी और आगे की सुनाता। अब दादी ने अपनी टॉलरेंस लिसनिंग एबिलिटी यहां तक सब रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिसीजन सब निभा दिया। नाउ लेफ्ट आउट क्वेश्चन इज टीम मेकिंग, ये विरोधाभासी व्यक्ति को साथ कैसे जोड़ा जाए। अब दादी प्यार से कहती है अच्छा तो गवर्नर भाई तुम कब क्या सोच रहे हो कि दादी मैं ये सोच रहा हूं कि मैं 15 दिन से आपका राजयोग सीख रहा हूं, मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो क्या करने की सोच रहे हो? कि दादी मैं भी 1 रुपया रोज के हिसाब से 30 रुपया महीना भेज दूंगा, क्योंकि अगर मैं आता हूं तो एक बड़ी फ्लीट आती है और उसमें तो 1000 रुपये का डीजल ही खर्च हो जाता है मेरी गाड़ियों में, इसलिए मैं 1 रुपया रोज देने तो नहीं आ सकता। वो तो ठीक है मेरे भाई, मीठे भाई, कि तुम 30 रुपया महीना भेजेगा, पर ये तुमने 30 रुपया कैसे गिना? तो कहता आपने कहा ना दादी, ईच वन ईच डे ईच रूपी, कि बस इतना ही सुना क्या आपने? दादी ने कहा था ईच वन ईच डे ईच रूपी कम से कम, वो कम से कम तुम भूल गया? अब देखिए अपना बनाती है दादी उसको, कि मेरा स्टूडेंट है, मेरा भाई है, तो 1 रुपये डालेगा, तेरी तनख्वाह कितनी है मेरे भाई? और गवर्नर साहब का चेहरा देखने वाला था, उन्हें फटाफट कॉफी कॉफी जल्दी टोली खिला साहब को, सबने बड़े प्यार से कॉफी पी, टोली खिलाई गई, पीस पार्क की मीटिंग पूरी हुई, गवर्नर साहब वापस जाते हैं, दादी वापस पांडव भवन आ जाती है, ये तो था नहीं। ठीक 10 मिनट के बाद ADC साहब आते हैं, एक कैप्टन थे, ही कम्स इन एंड ही सेज सर आई वांट टू मीट दादी जी। मैंने कहा भाई क्या हो गया यार, तुम बताओ काम क्या है? कि नहीं नहीं साहब, हिज एक्सेलेंसी हैज डिजायर्ड, मैं केवल दादी से ही बात करूंगा। ठीक है भाई। मैं अंदर गया दादी जी को, दादी जी बैठी थी अपने ऑफिस में, मैंने कहा दादी वो ADC आया है गवर्नर का। हाँ बुलाओ बुलाओ ADC भाई को, बुलाओ आओ मीठे भाई, आओ आओ ADC भाई आओ। क्या हाल है मेरे भाई का? कि भाई का हाल तो बहुत अच्छा है दादी, हिज एक्सेलेंसी हैज डिजायर्ड कि मैं, जब से उसने एक पैकेट निकाला, कि मैं आपको ये पैकेज आपको दूं। कि क्या है इसमें मेरे भाई? कि दादी हमारे गवर्नर साहब की तनख्वाह, उन्होंने बताया कि दादी को बोलना कि गवर्नर साहब की तनख्वाह 10,000 रुपया महीना है, उन दिनों 10,000 ही होती थी, और आज पेड़े था दादी, गवर्नर साहब को तनख्वाह मिली है, उन्होंने अपनी पहली डोनेशन के रूप में अपनी पर्सनल तनख्वाह भेजी दादी। उन्होंने कहा बताना पर्सनल तनख्वाह भेजी है आपके स्टूडेंट ने, आपके स्टूडेंट ने जो राजयोग सीख रहा है अपनी पर्सनल तनख्वाह भेजी है एज फर्स्ट डोनेशन इन दिस प्रोजेक्ट। अब आप ताली बजा सकते हैं। सब हो गया क्लियर? लीडरशिप क्या होती है, संस्था कैसे चलती है, टीम कैसे बनाई जाती है, विरोधियों को अपना कैसे बनाया जाता है, ये सब विशेषताएं हमारी दादियों में हैं, इसीलिए ये लेडीज लेड ऑर्गेनाइजेशन दिन दुना रात चौगुना प्रगति करती है। ओम शांति। अब हम सभी 1 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे और फिर आप लोग नाश्ते पर जाएंगे।